れあれあれ、
いやい
や、はい、あ、ちょっと
Elevo en esta posición por el café. Por su capítulo de guerra, un supremo pudiendo. Buenas tardes, amor.
आपको कोई भी तरह आपको एक जो जवाब देख के बात करना है, एक साथ सब दे दो आपको बल्कि
नहीं ऐसा मत करें. जैसे चार प्रकार के बंध हैं, उनका भी सबका समय एक ही है. मैंने प्रदेश भेद, प्रकृति बंध, ये चारों प्रकार का बंध एक ही समय में होता है. ऐसे ही आश्रय और बंध का समय अलग अलग है, समय एक ही है लेकिन उनके तत्व में फर्क है. आश्रय तत्व जो है वो कारण स्वरूप जो आप कह रहे हो, और बंध तत्व कार्य स्वरूप है. लेकिन कारण कार्य एक समय में भी होता है ना, कोई जरूरी नहीं है दो समय में कारण कार्य.
आश्रय और बंध का
एक समय में कारण कार्य अभी देखने में नहीं आया, आपको अगर कहीं दिखा हो तो मुझे दिखाई, मैं कल सबको बता दूंगा।
नहीं, आप एक समय का तो आप दो समय का उदाहरण बता दो।
तो एक समय का दो समय का तो हम बता दें।
हाँ, आगम आगम
आगम
ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं।
आगे देखिए इसमें।
अच्छा, आप ले।
हाँ जी,
एक माइक ले लो भाई, माइक।
हाँ हाँ,
हेलो भाई,
लो।
हाँ, वो
वस्तुतः इसमें ऐसा है, मैं भी थोड़ा बोल रहा हूँ। भावात्र और भाव एक ही क्षण में है, और ततो ऊर्ध्वम भी ऐसा सब मिलता है। ततो ऊर्ध्वम,
ततो ऊर्ध्वम,
हाँ, उसके बाद मैंने बंद, तो आश्रव कारण और बंधक का है। लेकिन जब एक ही समय में लिया है तो ये बात ऐसी घटाई जाती, आना वो आश्रव और रुकना वो बंद। तो जिस समय कर्मों का आना होगा और उसी समय यहाँ जीव के परिणाम से उनमें स्थित अनुवाद आदि फलना, वो वास्तव में एक ही समय में ऐसा भी घटता है। और जब कारण कार्य की व्यवस्था से भिन्न कहा जाए तो आश्रव कारण और बंधकारी और उसमें ततो ऊर्ध्वम भी शब्द आता है। इसी प्रकार का एक प्रश्न और बनता है कि एक समय की व्याख्यापन करते हैं कि एक समय की डेफिनेशन क्या है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के प्रदेश से समीपवर्ती प्रदेश पर मंद गति से जाए,
मंद गति से,
तो उसमें जो टाइम स्पेंड हो कालक्षेप हो उसका नाम एक समय। लेकिन ऐसा भी लिखा मिलता है नियम शास्त्र की टीका में है कि वो शुद्ध परमाणु जिस प्रदेश पर अवस्थित है मंद गति से एक प्रदेश को उलंग करके जाए, तो माने एक प्रदेश को उलंग करके जाए तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट तो एक समय,
तो एक समय,
तो एक समय। लेकिन आश्रव बंध और आश्रव क्या बोलते भावाश्रव भाव बंध में एक समय में ही स्थिति घटाई गई है। कारण कार्य की अपेक्षा तत्व ऊर्ध्वम शब्द भी देखा मिला है कि प्रथम आश्रव और बंध ऐसा भरद्वाज चंद्र की टीका में है। अब वो कौन सी गाथा में वो मेरे को अभी ख्याल नहीं है, लेकिन आया
आज आपके दो प्रकार के लक्षण की बात की आपने, दो लक्षण और अनित्यता लक्षण। इसमें पहले दो लक्षण में लक्ष्य क्या होता है, देखो जो ध्रुव की चर्चा आती है उसमें ध्रुव लक्षण और ध्रुव लक्ष्य ऐसा कोई भेद नहीं होता है, मगर वहाँ त्रिकाल लक्षण और त्रिकाल लक्ष्य ऐसा कहने का आशय ये है कि वो अंदर में ही स्वरूप ऐसा है कि जहाँ ज्ञान और नायक होता है वहाँ जानना और जनाना समझ में होता रहता है, उसमें कोई लक्षण वाली बात अंदर में नहीं होती है। पर्याय में ही लक्षण लक्ष द्रव्य को बता है, ऐसा अनित्य तारा से ही सिद्ध हो सकता है। वहाँ ध्रुव में जो लक्षण की चर्चा है वहाँ तो मात्र जानना 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 ऐसा ही होता है।
प्रश्न है, जहाँ प्रदेशों की भिन्नता की बात आती है वहाँ संवर का आत्मा होता है ऐसा आपने कहा, किंतु अन्य वक्ता ने कहा था कि संवर का यहाँ संवर तत्व किया था, कृपया स्पष्टता करें। बराबर है, संवर तत्व को जो हम देखते देखेंगे पर्याय निर्मल प्रणति को वो संवर तत्व नाम पाएगी, लेकिन जो आत्मानुभूति ही आत्मा है, जब वो आत्मानुभूति से ही आत्मा का अनुभव करते हैं अर्थात तब पता चलता है कि ये वास्तव में आत्मा में है, जिसका मैंने यही कहा था अनिग्रहण का विष्णु बोध। मैंने शुद्ध जो पर्याय प्रकृति जिसमें अनुभव आता है ये आत्मा, सकल सफेद है मीठी ऐसा तुमने जाना लॉजिक से, लेकिन अनुभव लिया ये विचार का तो उसको सकल कहें, तो वो अपेक्षा से वो अनुभूति ही आत्मा है। और सम्यक दृष्टि को संवर को सम्यक दर्शन को आत्मानुभूति को एक आर्थवा से सिद्ध किया ये अपेक्षा टीका है, और दूसरे कक्षा लोग उसको निर्मल पर्याय भी सरकार की दृष्टि भी क्षणिक नहीं ऐसा भेद देखेंगे तो निर्मल वितरागी पर्याय जो हुई आत्मानुभव जो हुआ। और ये तो सबको पता है कि जो अनुभूति होती है वो त्रिकाली की नहीं होती, अनुभूति हमेशा पर्याय में पर्याय की होती है, लक्ष्य त्रिकाली का होता है, त्रिकाली कभी क्षणिक प्रज्ञा में आता ही नहीं। इस प्रकार का उसको हम भिन्न भी देखते हैं, और जब भिन्न देखते हैं तब तो आत्मानुभूति नहीं होती। और जब भिन्न माने जो उसको अलग अलग देख रहे हैं, जब आत्मानुभव की शुद्धोपयोग की दशा है तब वही आत्मा है, ऐसा इस पर तो आचार्य ने सिद्ध किया है ये अपेक्षा से। और समर तत्व को उसका भिन्न करके देखो तो समर तत्व सात तत्व जब खड़े होंगे तो तब उसका स्वरूप क्या होगा। समर तत्व क्या है कि आक्रम बंध समझ पर्याय तत्व है, और जीव अजीव के संबंध से इनके वो बदलाए जाते हैं। लेकिन जब हम उसको आत्मानुभव को ही जब आत्मा से अनुभव उत्पन्न हुआ कहते हैं, स्वात्मानुभूति कहते हैं, निजानुभव कहते हैं, तो वो अनुभव और आत्मा कोई दो चीज नहीं रह जाती। ये अपेक्षा से संवर को आत्मा को जिसका ना संवर में है आत्मा पूर्ण कर्म झड़ जाए ऐसा सब उसमें उस बारे भावना कुछ भी नहीं भूलता है। मतलब उसमें आता है जो जयचिन छावर स्वामी जिन्होंने टीका की अपने समय साथी उन्होंने द्वारा भावना लिखी। और
एक ये प्रश्न अपना दोपहर में जो चर्चा चली थी उसमें हमने पर्याय के संबंध में कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक ने, कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध पर्यायार्थिक ने, इसी प्रकार से द्रव्यार्थिक ने के भी कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक ने और कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने ऐसे भेद की बात करी थी। उस संबंध में कारण शुद्ध पर्याय की भी कुछ चर्चा चली थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, कृपया इन तीनों के स्वरूप में स्पष्टता कीजिए। छायिक पर्याय किसे कहना, कारण शुद्ध पर्याय किसे कहना, और कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्यायार्थिक नय का जो विषय वो भी एक पर्याय बनेगी ना, तो वो पर्याय किसे कहना। मैंने इन तीन पर्यायों में आप अंतर बताओ, छायिक पर्याय में, कारण शुद्ध पर्याय में, और कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय जो पर्याय है उसमें। इसमें कर्मोपाधि एक तो कारण शुद्ध पर्याय है। कारण शुद्ध पर्याय क्या है? कारण शुद्ध पर्याय वो है कि जब सम्यक्त्वादि की अवस्था में आत्मानुभूति के समय जब द्रव्य का आश्रय किया जाता है उस समय जो द्रव्य का अंश हमारी दृष्टि का विषय बनता है उसे कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। द्रव्य का अंश जो अनुभूति के समय दृष्टि का विषय बनता है उसे कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। द्रव्य तो है त्रिकाली, इन कारण शुद्ध पर्याय त्रिकाली का ही वर्तमान है, क्योंकि त्रिकाली को विषय नहीं बनाया जा सकता। वर्तमान पर्याय है वो वर्तमान पर्याय ही जो उसको सामने दिखेगा उसको वो विषय बना रही है, लेकिन वो भूत में भी था, वो भविष्य में भी रहेगा, ये तो उसका उसकी शक्ति है, उसका पावर है, लेकिन उसको विषय कैसे बनाए। जैसे यहाँ गुरुदेव का स्टेचू लगा है, हम गुरुदेव के ये स्टेचू 20 साल से लगा है और आगामी 20 साल तक रहेगा, 50 साल तक रहेगा, तो आप क्या उसको पूरे 90 साल का को विषय बनाते हो स्टेचू को? आप ये स्टेचू 90 साल रहेगा, 100 साल रहेगा, लेकिन आप इसको 90 साल वाले स्टेचू को विषय बनाते हो? है वही का वही स्टेचू, लेकिन हम जब उसको देखते हैं तो उस समय का ही वो स्टेचू हमारे ज्ञान का विषय बनता है, हमारी दृष्टि का विषय बनता है। ऐसे ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है इसका वर्तमान ही हमारा दृष्टि का विषय बनता है, ये हमारी कार्य शुद्ध पर्याय का विषय बनता है, इसलिए इसको कारण शुद्ध पर्याय नाम दिया गया है। और जो इसको पर्याय शब्द दिया गया है ना, ये पर्याय इसीलिए कहा गया है कि ये त्रिकाली का वर्तमान है, और जो वर्तमान होता है उसे हम पर्याय कहते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको कारण शुद्ध पर्याय तो त्रिकाली के वर्तमान का नाम है। अब तीसरा जो है, दूसरा जो है वो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय क्या है। इन्होंने बीच में कहा भी था कि भाई ये उत्पाद वाली उत्पाद व्यय वाली पर्याय की बात है क्या, तो मैंने भी कहा था हाँ उसकी उसकी बात है। क्या कहना है उसमें कि जो जो भी पर्याय है, जो भी पर्याय है, उस सब पर्यायों को, सब पर्यायों को, राग की पर्याय को, राग की पर्याय को धवला में पारिणामिक भाव का है। क्यों कहा बताओ? मैं उस विवक्षा को बता ना, वहां क्यों कहा उसको पारिणामिक भाव? उसको पारिणामिक भाव इसलिए कहा, उस राग पर्याय को भी यदि आप कर्मोपाधि के बिना देखते हैं, कर्म की उपाधि के उदय के बिना देखते हैं, उपशम के बिना देखते हैं, क्षय के बिना देखते हैं, क्षय उपशम के बिना देखते हैं, ये चार प्रकार की अवस्थाओं के बिना देखते हैं, तो उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। जहाँ पर ये चार अवस्थाएं नहीं घटती हैं, उन सब भावों को जिनागम में पारिणामिक भाव कहा गया है। साधन गुण स्थान को पारिणामिक भाव कहा है, साधन गुण स्थान को पारिणामिक भाव कहा है, श्रद्धा का पारिणामिक भाव कहा ना, क्योंकि श्रद्धा का जो दर्शन मोहिनी कर्म है ना, तो वहाँ उपशम है, न चोपसम है, न उदय है, न क्षय है, इसलिए वहां पर उसका उसका पारिणामिक भाव कह दिया। ऐसी भव्यत्व को पारिणामिक भाव कहा, अभव्यत्व को पारिणामिक भाव कहा। क्यों? क्योंकि जो अभव्यपना है वो किसी कर्म के उदय की अपेक्षा से नहीं है, कर्म के उदय के कारण अभव्यपना नहीं है, लेकिन उसको भी पारिणामिक भाव कहा। ऐसी राग को भी यदि हम इन चारों अवस्थाओं के से भिन्न करके देखते हैं तो वो पारिणामिक भाव है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये पर्याय का पारिणामिक भाव है ये द्रव्य का पारिणामिक भाव नहीं, ये पर्याय का पारिणामिक भाव। तो यहाँ पर हम जो है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक न से संसारी जीव की पर्याय को भी उत्पादी है वाली, वो पर्याय को भी हम सिद्ध की पर्याय के समान देख सकते हैं। मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे पांच ज्ञान की अवस्थाएं हैं, ये सब उपाधि जनित है, किसी में शोकसम की उपाधि है, किसी में क्षय की उपाधि है ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान में शोकसम की उपाधि है, केवल ज्ञान में क्षय की उपाधि है। लेकिन जो ज्ञान सामान्य पर्याय रूप ज्ञान सामान्य, जानना 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 जानना, एक बात गुरुदेव के समय भी चलती थी, वो थोड़ा सा आपको इशारा करता हूँ। गुरुदेव के समय में ऐसा ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा था या गुरुदेव ने समाधान किया था, मुझे ये ध्यान नहीं है, आप लोगों को ज्ञान होगा आप बता देना मुझे। गुरुदेव के समय ऐसी बात आई थी कि जो पर्याय द्रव्य में से आती है, जो पर्याय द्रव्य में से आती है वो तो शुद्ध ही आती है। अब देखना इसमें समय भेद नहीं है पंडित जी, समय भेद नहीं है। पर्याय जो द्रव्य में से आती है वो तो शुद्ध ही आती है, लेकिन बाद में मतलब ये तो अपन कहने में पड़ रहा है, कथन में बाद आ रहा है, लेकिन उसमें जो अन्य द्रव्य की सापेक्षता आती है ना, कर्म की उदय की अपेक्षा आ जाती है, क्षयोपशम की अपेक्षा आ जाती है, क्षयोपशम की अपेक्षा, ये दूसरी उपाधि के साथ में जब हम उसको मिश्रित रूप से देखते हैं तो ये उसकी अशुद्धता है, ये उसको अशुद्धता कहते हैं। पर्याय जो आई है वो तो पर्याय कोई अशुद्ध द्रव्य में से नहीं आई, द्रव्य में से तो वो शुद्ध आई, लेकिन उसमें जो अशुद्धता दिखाई दे रही है वो अशुद्धता अन्य द्रव्य सापेक्ष है। इसलिए एक पर्याय में दो अंश हैं, एक पर्याय में दो अंश, कौन सी पर्याय में? सापेक्ष पर्याय में। इस सापेक्ष पर्याय में जो सापेक्षता है वो अशुद्धता कहलाती है, और वो सापेक्ष पर्याय में भी एक निरपेक्षता भी है, वो शुद्ध है। इसलिए जो है इसको इस रूप में यदि हम देखेंगे तो, और जो छायिक पर्याय किसे कहा, तो जो कर्म के उदय से जो पर्याय चल रही थी तो वो उस समय जो औदयिक अवस्था औदयिक कहलाती थी, लेकिन जब जिस कर्म के उदय से वो औदयिक कहला रही थी, जब उसी कर्म का क्षय हो जाता है, उस कर्म का क्षय हो जाता है तो उसकी अपेक्षा से उस पर्याय को छायिक कहा जाता है। इसलिए छायिक पर्याय उपाधि सहित है, और जो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय का विषय है वो उपाधि सापेक्ष नहीं है, और इसको हम पर्याय का पारिणामिक भाव कहेंगे, और कारण शुद्ध पर्याय को हम द्रव्य का पारिणामिक भाव और उसका भी वर्तमान, उसका भी वो वर्तमान को कहेंगे। ऐसा हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर सकते हैं, और कोई विशेष बात विद्वान बताना चाहे तो जरूर बताए।
जी, कारण शुद्ध पर्याय को अपने उत्पाद में घटाया,
नहीं उत्पाद नहीं कह रहा हूँ मैं, तो अभी तो बहुत स्पष्ट कह दिया ना मैंने उत्पाद लिया। नहीं 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 उस नहीं मैंने ये भी कहा था कि उस समय कि इसी को कारण शुद्ध पर्याय से भी समझा जा सकता है, ऐसा मैंने कुछ वाक्य कहा था, इसको कारण शुद्ध पर्याय से भी समझा जा सकता है। फिर आपने कहा कि भाई उत्पाद व्यय वाली पर्याय में ये घटेगा क्या, तो हमने फिर कहा नहीं उत्पाद व्यय वाली पर्याय में भी घटेगा और वो ऐसे घटेगा, इसमें वो कर्मोपाधि निरपेक्ष वाली बात। हाँ जी हाँ पर्यायार्थी में पर्यायार्थी में पर्याय
एक हेतु दिया है जो गमला में है कि जो रागादी देवी पारिणामिक थे तो कहा गुरुदेव ने भी स्पष्ट किया है कि जो हम सूत्र पढ़ते हो सुने छाए को भाव मिश्र से जीव से स्वतत्व मौलिक पारिणामिकों के स्वतत्व कहने से उसका पारिणामिक पन सिद्ध किया गया कि पारिणामिक उसे कहते हैं जो अपने से हो फर्क न सत अहेतु पना एक समय तक सत अहेतु पना वो पर्याय अपने से खड़ी हुई। और एक अच्छी बात राजे जी ने ये भी कही कि जो उत्पाद पर्याय का होना अभी सुंदर शुद्ध मत देखो उत्पाद में ध्रुव ये वस्तु का लक्षण है, लक्षण में जागृत नहीं होता पर्याय को शुद्ध नहीं आती दुखाना पर्याय तो हो नहीं अवस्था के नाते नहीं रहता। तो अब उसमें जो पड़ता अशुद्धता पर ध्रुव के लिए आती है तो वो अवधि को ऊपर ही कहलाती है, लेकिन पर्याय का होना वो उसका स्वाभाविक स्वभाव है। और जब अशुद्ध पर्याय को भी परिणाम था तो उसके अपेक्षा इतनी वो अपनी उस समय की योग्यता से स्वयं हुई है पढ़ने लिखी
है। थोड़ा इसमें दो बातें जो राकेश जी ने बोली है कारण शुद्ध पर्याय के बारे में और जो द्रव्य में से शुद्ध पर्याय आती है उसके बारे में
जी,
इसमें मेरा कुछ मंतव्य दूसरा है मैं सबको बताना चाहता हूँ और आप
जरूर
उसमें कोई फर्क हो तो बताएंगे।
जरूर जरूर जरूर
कारण शुद्ध पर्याय जो है वो सचमुच में त्रिकाली द्रव्य ही है
बराबर मंजूर,
उसमें कोई त्रिकाली द्रव्य में ऐसा कारण शुद्ध पर्याय का अंश भेद नहीं होता है। जब दृष्टि द्रव्य पूरे द्रव्य पर पड़ती है तब ही दृष्टि में शुद्धता आती है, कारण शुद्ध पर्याय के ऊपर दृष्टि पड़ने से दृष्टि शुद्ध नहीं होती है। पूरा त्रिकाली द्रव्य उसके अनंत गुण और उसकी अनंत कारण शुद्ध पर्याय वो पूरा अखंड दृष्टि का विषय है। अगर आप उसको कारण शुद्ध पर्याय को अंश से लोगे त्रिकाली का वर्तमान है वो 100% सही बात है, मगर वो वर्तमान का लक्ष्य करने से दृष्टि सम्यक नहीं होती है, वर्तमान का लक्ष्य पर्याप्त नहीं पाते है। और त्रिकाली ध्रुव जो अखंड है द्रव्य गुण और कारण शुद्ध पर्याय से अखंड जो है वो सचमुच में द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है, ये मेरा ऐसा मतलब है। दूसरा जो पर्याय द्रव्य में से आती है वो शुद्ध आती है ऐसा कभी आया नहीं है।
अच्छा
हाँ पर्याय द्रव्य में से जो आती है वो द्रव्य सामान्य है तो पर्याय सामान्य आती है, और वो सामान्य पर्याय जो है वो एक ही समय में अंदर से कोई स्वयं औषधिक और एक भाव नहीं आता क्योंकि अंदर में वो भाव नहीं है, तो अंदर में से वो क्या है उत्पाद निकलता है। अभी उत्पाद निकलने के समय ही उसी समय वो कन्वर्ट होके वो चार भाव रूप बन जाता है, कोई भी भाव ऐसा उसका मंतव्य ऐसा है। इसीलिए अगर शुद्ध पर्याय अगर अंदर से आती है ऐसा अपन सोचेंगे तो शुद्ध पर्याय आई फिर अशुद्धता कैसे आएगी।
नहीं नहीं शुद्ध इसमें जो
सामान्य में से वो कन्वर्ट होती है क्योंकि अंदर सामान्य द्रव्य है तो पर्याय तो ऐसी आएगी मगर ऐसी आएगी वो फल के निमित्त से या तो स्वर के लक्ष्य से शुद्ध या अशुद्ध रूप परिणाम ऐसा मेरा मतलब ने कभी ऐसा नहीं लिया कि द्रव्य में से शुद्ध पर्याय।
नहीं इसमें मेरा ये कहना है कि जो जिसको आप सामान्य पर्याय कह रहे हो ना उसी को मैं शुद्ध पर्याय कह रहा हूँ, क्यों क्योंकि जैसे कारण शुद्ध पर्याय इसमें भी उसमें शुद्ध शब्द डाला है तो ये कारण शुद्ध पर्याय को शुद्ध है क्या, ये तो त्रिकाली का वर्तमान है तो ये तो ये शुद्ध नहीं है, लेकिन चूंकि त्रिकाली शुद्ध है त्रिकाल शुद्ध है इसलिए उसको जो उसके वर्तमान को भी शुद्ध भले ही वो सामान्य है सामान्य ही है इसलिए सामान्य पर्याय कहो अथवा यहाँ पर जो जिसको हम शुद्ध पर्याय कह रहे हैं इसको इसमें कोई फेर नहीं है, वो शुद्धता छायिक भाव वाली शुद्धता नहीं है, ये सामान्य पर्याय रूप ही शुद्धता है, वही यहाँ पर मंतव्य है।
तो सामान्य या स्वच्छ पर्याय भी बोल सकते हैं।
हाँ,
स्वच्छता
बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं।
स्वच्छता में क्या होता है कि स्वच्छता में शुद्ध और सामान्य का कोई
लेकिन शब्द में
स्वच्छ होता है।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ शब्द में रूढ़ होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण शुद्ध पर्याय गड़बड़ा जाएगी नहीं तो कारण शुद्ध पर्याय को फिर शुद्ध क्यों कह रहे हो। इसलिए जो है वो शुद्ध शब्द से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो भी सामान्य है, वो कुछ शुद्ध है क्या? शुद्ध है क्या? लेकिन जो सामान्य है वही शुद्ध है, इसलिए उसको भी शुद्ध अन्य द्रव्य से निरपेक्षता की अपेक्षा भी ऐसा शुद्धता का अर्थ किया जाता है। इसलिए शुद्धता के हमेशा एक ही अर्थ है ऐसा नहीं है। शुद्ध माने रागादि से रहित शुद्धता, उसी का नाम शुद्धता है, ऐसा अर्थ नहीं है। ठीक है, आपकी बात।
गुरुदेव ने इस विषय में ऐसा कहा
जी
कि द्रव्य और गुण वे स्वयं सत्य है, द्रव्य भी सत्य है, गुण भी सत्य है और पर्याय भी सत्य है। तो द्रव्य तो अनादि अनंत है ही, अनंत गुण भी अनादि अनंत है, और द्रव्य और गुण का अभेद कहलाता है सामान्य। क्या कहा? द्रव्य और गुण का कहलाता है अभेद सामान्य, उसको कहते हैं सामान्य द्रव्य, और पर्याय में पर्याय उत्पाद वाली होती है, लेकिन पर्याय का जो पर्यायपना है धर्म है वो त्रिकाली होता है और वो पारनामी भावरूप होता है, उसको कहा विशेष द्रव्य। और जब सामान्य द्रव्य और विशेष द्रव्य दोनों को अभेद ग्रहण करो तो पूर्ण द्रव्य कहलाता है, पूर्ण द्रव्य के आश्रय से आत्मानुभूति होती है। अगर द्रव्य में पर्याय ना हो, कोई प्रकार से आप पर्याय ना रखो तो अधूरा द्रव्य कहलाएगा। सामान्य अकेला अधूरा है और विशेष अकेला भी अधूरा है, और सामान्य विशेष मिलकर अखंड द्रव्य पूरा होता है। ये इसलिए ये भी कहा उन्होंने गुरुदेव ने कि हमने इसमें जो भेद के समझाने के लिए मैंने भेद किया है, भेद जानना नहीं अभेद ही कहना, जहाँ कारण शब्द पर्याय है वहाँ सामान्य जो द्रव्य है ध्रुव सामान्य द्रव्य और गुण वो भी वही अभेद मौजूद है, तो हम कारण शुद्ध पर्याय की तरफ से कहें तो भी अभेद जानना, और सामान्य द्रव्य की तरफ से कहें तो भी कारण शुद्ध पर्याय को भी अभेद जानना, ऐसे अभेद है। रही बात इतनी कि जब त्रिकाल है पारनामिक भाव रूप है उसको पर्याय नाम क्यों दिया? उसका कारण ये है कि सामान्य में परिणाम नहीं हो सकता, सामान्य में प्रति समय कारणपना बनने की योग्यता नहीं है। एक एक समय के कार्य का कारण अगर कोई बन सकती है तो वो पर्याय का उस समय का अंश ही बन सकता है घर में, और इसलिए ये अंश वेद अपन ने समझाने के लिए किया है। अंश वेद है पर्याय का, पर्याय स्वभाव नहीं
और दृष्टि में भी अंश नहीं,
और दृष्टि में भी अंश नहीं, लेकिन समझाए कैसे? क्योंकि कार्य हुआ है क्षण, तो कारण त्रिकाली और कार्य क्षण ऐसा नहीं होता। कार्य जब क्षण है तो कारण भी उसका उस काल का ही कारण कारण बनेगा, पूर्व का कारण कारण नहीं बन सकता और आगामी कारण भी कारण नहीं बन सकता, उसी काल का कारण चाहिए, उस काल का कारण अखंड में से एक अंश ग्रहण करके ही समझाया जाएगा। समझ में? एक माला में दाने आते हैं, इनमें क्रम होता है, लेकिन माला में जो धागा चल रहा है उसमें कोई क्रम है क्या? चलना तो क्रम क्या बताया? इसलिए क्रम से आते चलना है, इसलिए बताया है। तो कार्य जब क्रम से होता है, कार्य जब एक समयवर्ती होता है तो कारण त्रिकाली कहना तो खाली उपचार है, भेदोपचार है, चलना है ना, वास्तव में सच्चा नहीं है। इसलिए त्रिकाली जो उपादान कारण है वो सच्चा नहीं है, और अनंतपुर क्षणवर्ती पर्याय कारण और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय ये भी साझी बात नहीं है। तत्समय की योग्यता ही कारण और तत्समय का कार्य ही कार्य, यही बात सांची है, उसमें सट कारक लागू होते।
इसको जरा डॉक्टर साहब पर्याय के सटकारक से घटाएंगे तो जो तत्समय की योग्यता में कार्य हुआ वो पर्याय ही कर्ता कर्मादि सिद्ध होती है, और जो कहा कारण शुद्ध पर्याय उसको वर्तमान में त्रिकाली का वर्तमान देखा माने अखंड पूरा ही तरफ ध्रुव देखा
अखंड
पंचम भाव में, लेकिन उसको अंश कहने से ऐसा पर्याय नहीं लेना कोई व्यक्ति ऐसा
समझाने के लिए भेद करके समझाया गया है इतना बताया है।
एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली अपने चेतन भाई ने कि कारण शुद्ध पर्याय का लक्ष्य नहीं किया जाता। लक्ष्य तो किया जाता है द्रव्य स्वभाव का, लेकिन ये फैक्ट है कि आप लक्ष्य करोगे त्रिकाली का, लेकिन त्रिकाली लक्ष्य होगा नहीं, लक्ष्य होगा उसका वर्तमान ही, लेकिन दृष्टि वर्तमान पर नहीं रखी जाएगी, दृष्टि तो त्रिकाली पर रखी जाएगी, लेकिन आप त्रिकाली पर कितनी दृष्टि रख लो लेकिन आपको दिखेगा वर्तमान ही उसका। ये उसका मैंने लॉजिक है, इसलिए हमको ये जो समझाया जा रहा है ये सब ज्ञान से समझाया जा रहा है, और वस्तु दृष्टि से जो दृष्टि का विषय है वो दृष्टि का विषय तो वो पूर्ण ही है, इसलिए वास्तव में कारण शुद्ध पर्याय भी दृष्टि का विषय नहीं है ऐसा कहा जाए तो कोई दोष नहीं है।
ऐसा नहीं है राकेश जी।
हाँ जी,
आपका जो आप जो बता रहे हो ना उसके चौथा।
हाँ बताइए।
कारण शुद्ध पर्याय जो है वो त्रिकाली द्रव्य से अनन्य है ऐसा भी नहीं है, वो त्रिकाली द्रव्य से अभेद है ऐसा भी नहीं है, वो द्रव्य ही है सब कुछ। पहले तो ये स्थापना करनी थी।
जरूर जरूर,
उसमें वर्तमान और त्रिकाल का भेद करने की आवश्यकता है। वो जब त्रिकाली द्रव्य पर दृष्टि जाती है तब उसको कारण पना कारण से पर्याय से मिलता है, ऐसी बात
बराबर।
वो अंत पर दृष्टि जाती है कि वर्तमान दिखता है ऐसा नहीं होता है। पूरा द्रव्य ही पूरा द्रव्य के ऊपर ही अहम होता है, अगर अहम अंत पे हो जाए तो पर्याय कभी खुद नहीं होता
बराबर।
पूरा दृष्टि का विषय अखंड है, उसमें खंड है ही नहीं कुछ। कारण से पर्याय का क्यों प्रकरण आया है कि सभी पर्यायों की स्थिति एक साथ में पूरी नहीं होती है, चतुर्थ गुण स्थान में समय दर्शन नहीं होता है, आगे आगे जाके सभी पर्याय जिसे जहाँ किया चारित्र बारहवें गुण स्थान के पहले समय हुआ, त्रिवल स्थान तेरहवें गुण स्थान में हुआ, तो लक्ष्य तो हुआ है द्रव्य का, तो ऐसे भेद क्यों पड़ते हैं, तो वहाँ कारण शुद्ध पर्याय की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये विषय पर जाएंगे उन्हें छेड़ा है, मगर दृष्टि का विषय तो पूरा अखंड ही है, उसमें वर्तमान और ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष पेश करके बताया, मगर ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष वो अखंड रूप है, उसमें विशेष को अलग कारण शुद्ध पर्याय दर्शाने के लिए विशेष करके दिखाया, बाकी ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष का भेद रूप नहीं है, पंडित जी ने बताया वो तो एक उसकी स्पष्टीकरण के लिए बताया, वहाँ भेद है ही नहीं सब कुछ में, वो अभेद ही है पूरा, वो पूरा दृष्टि का विषय अखंड है।
अखंड
खाली वर्तमान का गुरुदेव का जैसे देखा वर्तमान का ऐसा नहीं है, और नब्बे वर्ष की पर्यायों का अभेद भी है।
चलो
प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न है, जैसे मैं बताया कि था मध्य मंगल का हेतु कृपया स्पष्ट कीजिए, तीन प्रकार के हेतु मंगल, तीन प्रकार के मंगल बताए थे, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। आदि मंगल तो मेरा जो कार्य हमने शुरू किया है वो निर्विघ्न समाप्त हो, इस भावना से कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए वो मत का आदि मंगल, और वो जो अगर विद्या अध्ययन कर रहा है तो विद्या की निर्विघ्नता से पारंगतता प्राप्त हो वो मध्य मंगल में हुआ करती, और विद्या का फल प्राप्त हो वो अंत मंगल में होता है। ये मध्य मंगल इसके लिए है कि विद्या में पारंगतता आवे, इसके लिए ये मध्य मंगल किया जाता, क्योंकि पारंगतता मध्य में सारा वर्णन जटिल चलता है और वो फिर ख्याल में आवे तो विशेषता उसमें आ जाती, इतना। और इसमें एक और है कि भेद विज्ञान विषय इस शिविर में धवला का मंगल विषय प्रकरण समझाने का उद्देश्य कृपया स्पष्ट करें। सुनने वाले सब हर समय ध्यान रखे उद्देश्य का।
मैंने पंडित जी से पूछा था,
अभी मैं पहले आपसे पूछूं फिर मैं खुलासा करूं। आप हाँ सुनिए, तो आप यहाँ आके किस उद्देश्य से बैठे हो? नहीं पूछना चाहते हो आप?
मंगल, हाँ मंगल के उद्देश्य से बैठे हो?
काय के लिए बैठे हो?
मंगल हमारा मंगल
सूत्र पर्याय है, ये त्रिकाली द्रव अभेद द्रव अथवा ये तुम्हारे से स्तंभर का जो कहना चाहिए उपयोग, ये जिसको हमें विषय बनाना है काहे के लिए बनाना?
अपने मंगल के लिए,
पर्याय में सुख प्रकट करने के लिए, आपके लिए आनंद पाने के लिए। तो वही आनंद को तो मंगल कहते हो, है क्या मंगल? तो हमने दूसरे तरफ से मंगल की महिमा बताई कि आत्मा मंगलमय है। त्रिकाली मंगल अगर कोई है तो आत्मा है, और उसके आश्रय से जो दशा प्रकटेगी वो भी मंगलमय प्रकटेगी है, और जो मंगल हो चुके हैं, मंगल रूप प्रकट हो चुके हैं, उनके आश्रय से भी मंगल का मार्ग मिलेगा। सब मंगल रूप है, और चेतन अचेतन मंगल भी इसी प्रयोजन से बताया था। लेकिन जो बात तो ये, अपने बीच में कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो ये सोचते हैं कि ये आत्मा चेतन है और अचेतन से इसको मंगल की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अचेतन से मंगल की प्राप्ति होती है, ये व्यवहार है।
अजीव मंगल भी था ना,
अजीव मंगल आया ना उसमें, इसलिए मैंने कहा व्यवहार है। मैं कहता हूँ समय साथ से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, बोलो
व्यवहार है, व्यवहार है,
व्यवहार है। पर गाथा तो ऐसी लिखी सर्वशुद्ध अधिकार में, रे शब्द है नहीं ज्ञान, क्योंकि ज्ञान कुछ जाने नहीं, इस हेतु से शास्त्र अन्न और ज्ञान अन्न प्रमुख है।
वाह, शब्द की
अपेक्षा समझना पड़ेगी, अन्न कोई रास्ता नहीं है भ्रांतियाँ मिटाने का
अपेक्षा।
ये तो इसी प्रयोजन से मैंने प्रकरण लिया, मैंने लेने के पहले आपसे संयोजक महोदय से ये बात तय कर ली थी, इसके बाद
मैं इसका समाधान तो ये है पंडित जी कि सबसे पहला व्याख्यान आपका था, वो डॉक्टर साहब का तो बीच में आ गया, आपका सबसे पहला व्याख्यान था पूरे शिविर का, तो मंगलाचरण तो जरूरी था ना, तो वही मंगलाचरण आपने किया।
ये बहुत अच्छा आपका समाधान है, शायद अब हो गए
प्रश्न भी मेरे ये समाधान।
आप कई प्रश्न
एग्जाम में मैंने किया था ना आपको।
आपने आज सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम वेदना की जो बात की वह संक्षिप्त में कृपया फिर से स्पष्ट करें। 181 से 83 में किस प्रकार के वेदना की बात है वह भी कृपया। आज जो बात आई थी वो स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतम ऐसा बोला था, स्थूल माने जो अपनी द्रव्यकुण पर्याय की सत्ता में नहीं है उससे वेदना करना, उसको स्थूल वेदना बोला जाता है। अपनी सत्ता में बहिर्गत से पर्याय में रागादी भाव उत्पन्न होते हैं, उससे स्व का वेदना करना वो सूक्ष्म वेदना बोला जाता है। और अपनी निर्विकारी पर्याय से भी विकारी द्रव्य भिन्न है वो वेदना को अति सूक्ष्म वेदना बोला जाता है। 181 से 83 में किस प्रकार के वेदना की बात है वहाँ राग और नाम के वेदना की चर्चा है। राग का प्रदेश पृथक है और नाम का माने आत्मा का प्रदेश पृथक है, ऐसा समझता है उसको सवर प्रकट हो जाता है।
एक
वेदना का प्रारंभ मिथ्या तो दशा में हो रहा है या समित दशा में होता है? वेदना का प्रारंभ तो मिथ्या की दशा में ही शुरू हो जाता है, जिसको मिथ्या तो दशा में पता चल जाता है कि ये राग और नान भिन्न भिन्न है, तो उसी समय उसका भेद ज्ञान समेत और उससे शुरू हो जाता है। पहले उसको निर्णय में आता है और बाद में वो निर्णय यथार्थ निर्णय में परिणम के अपूर्व निर्णय में सविकल्प वेदन आके पक्का निर्णय में अनुभूति का जन्म होता है।
निर्णय यथार्थ
अपूर्व और
पता
पता, तो इसमें क्या
फर्क? देखो ये क्या है कि उसकी जो विधि लंबी है वो अपन प्रवचन में जरूर लेंगे उसको। एक तो निर्णय होता है, बाद में यथार्थ निर्णय भेजी आता है, बाद में वो निर्णय आगे बढ़ के अपूर्व निर्णय में आता है सभी तक स्वेदन में, और बाद में निर्विकल स्वेदन में पता निर्णय बोला।
अच्छा पूछा।
ये प्रश्न हमसे भी पूछा और राकेश जी से भी प्रश्न करता है, पत्थर से लग रहा है रजनी भाई पर।
बोलो।
गत शिविर में एक प्रश्न पूछा था, पूछा गया था कि दृष्टि के विषय में परस्पर विरोधी धर्म युगल नित्य नित्य शामिल है या नहीं। मेरे ख्याल से आप विद्वानों इस बिंदु के बारे में एक मत नहीं था। क्या विद्वानों ने सर्वसम्मत निर्णय ले लिया है?
लिया है तो क्या?
मैं इसको जवाब दूँ, जो मैं जवाब दूँ उस समय शायद जल्दी में कुछ पढ़ नहीं पाए थे, इसके बारे में बाबू इंदल जी से मेरी चर्चा हुई। अपने एक बार विशिष्ट विद्वान है, उन्होंने एक लेख भी लिखा जो इसमें समाहित किया है, समय सारणी लास्ट में जोड़ा गया। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू में दिया है, बाद में हिंदी भी जुड़वाया। देखिए, इस अनंत धर्मों के साथ प्रत्येक वस्तु में अनंत ही गुण पाए जाते हैं। धर्म व गुण के स्वरूप में अंतर होता है। धर्म परस्पर विरुद्ध और सापेक्ष होते हैं। परस्पर विरुद्ध एवं सापेक्ष होने के कारण दो दो धर्म युगल साथ ही रहते हैं और उनकी पर्याय नहीं होती, अपन सब जानते हैं। इसका सबल हेतु यह है कि पर्याय में विकार की संभावना होती है। तब जैसे नित्य धर्म में विकारी प्रणमन होगा तो अवश्य अनित्य रूप की होगा, और ऐसा होने से स्वरूप मन सत्ता से ही पूरी वस्तु अनित्य हो जाने से नित्यता के सर्वनाश के साथ संपूर्ण वस्तु का एक क्षण में ही पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। गुण परस्पर विरुद्ध और सापेक्ष नहीं होते, किंतु प्रत्येक गुण भिन्न स्वभाव वाला निरपेक्ष ही होता है, तथा प्रत्येक गुण द्रव्य की तरह सदैव ध्रुव होने पर भी प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक गुण की प्रकृति या स्वभाव के अनुरूप गुण के अतिरिक्त एक समयवर्ती क्षणभंगुर पर्याय होती है। उस पर्याय को ही गुण की पर्याय अथवा गुण का प्रणमन कहते हैं। इसी प्रकार अपने शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में अनंति सुमधुर गुण शाश्वत तथा सघन रूप से एकीभूत एवं परिव्याप्त होने से निःशुद्धात्मानुभूति के क्षण में अनंति गुणों की अनंति पर्यायों का एक स्वादिष्ट पेय की तरह एक में मिलित अखंड इंद्रियातीत अत्यंत विलक्षण एवं असीम सुस्वादु रसा स्वादन होता है। अनेकांतिक ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य संपूर्ण विश्व की सत्ता अत्यंत भिन्न ज्ञात हो जाने पर निखिल जगत से रंच मात्र भी प्रयोजन नहीं रहने से सर्वथा निरपेक्ष अपने चेतन तत्व की अनुभूति ही क्रियमाण होती है। अनुभूति में अनंत गुणात्मक शुद्ध शाश्वत आत्मद्रव्य श्रद्धा व ज्ञान का विषय होता है। अनंत सापेक्ष धर्म व क्षणभंगुर पर्याय उसमें सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि धर्म परस्पर विरुद्ध स्वभावी द्रव पर्याय से संबद्ध होने से एवं परस्पर विरुद्धता तथा सापेक्षता के कारण दो दो धर्म साथ ही साथ रहने से तथा पर्याय क्षणभंगुर अनित्य होने से उनके अहम एवं अनुभूति में आकुलतापूर्ण विकल्पों का जन्म हुए बिना नहीं रहता, ऐसे और भी आगे सिद्ध किया है। इससे आपको कुछ ख्याल में आया होगा। इस बारे में मैंने फोन पर चेतन भाई जी से बात की थी, क्योंकि ये चलता रहता था कि आपके चिंतन में क्या आया, तो आपने ढूंढकर मुझे बताया था अपने समय साथ सिद्धि में या उसमें कोई तेज, अभी मैं भूल गया।
प्रवचन है गुरुदेव
का। हाँ, प्रवचन है गुरुदेव का, और उसमें ये बात आई थी। अनेकांतिक ज्ञान में सब समय ज्ञान, दृष्टि के विषय में तो अखंड गुणों का पिंड और कारण हेतु दे दिया नहीं बनी ने कि वे परस्पर विरुद्ध है नित्य रण और उनकी पर्याय वहाँ भी परस्पर विरुद्ध
नहीं है, विरुद्ध भाषिक होते हैं।
वाह,
विरुद्ध नहीं है,
क्या बात,
कोई विरोधाभास नहीं है।
ये दूसरी विरोधाभास नहीं होने पर भी न्याय में सुनिए रजनी, पहले परस्पर विरोधी धर्म की परिभाषा यहाँ लिखी है। एक वस्तु में वस्तु की उपजाने वाली अस्थि नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाश होना निकालते हैं, ये तो परस्पर विरुद्ध है दोनों है और नहीं है, एक है और अनेक है।
कहने जाता है मतलब ऐसा लग रहा है कि परस्पर विरोध वो इसलिए कहने में आ रही है कि अस्थि नास्ती की विरोधी है, नास्ती अस्थि की विरोधी है, लेकिन अस्थि का अपना अस्तित्व है, नास्ती का अपना अस्तित्व है, कोई विरोध नहीं।
ये सपेक्षा दोनों के साथ रहने में कोई विरोध नहीं, ये तो बात स्वीकार ही है, लेकिन जब हम शक्तियों का वर्णन करेंगे तो जो एक पर्याय का धर्म लिए हुए है और एक उसका ध्रुव धर्म लिए हुए, शक्ति कैसे निर्धारण करोगे? एक उत्पाद व्यय इसको पर्याय से किया और ध्रुव को सूत्रकालीन ध्रुव से किया, तो इस प्रकार से उसमें दोनों धर्म में प्रणमन होते हुए भी नहीं प्रणमना, जड़ भावी जड़ प्रणम है, चेतन चेतन भाव, कोई कोई ने पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव, पलटती हुई भी नहीं पलटता और नहीं पलटती हुई भी पलटता है, तो परस्पर विरोधी हुई ना वर्ग, तो ये अपेक्षा से उनमें परस्पर विरोधता भी जानना, लेकिन ऐसा विरोध नहीं जानना कि मेरे में ज्ञान गुण भी है और एक अज्ञान नाम का भी है, ऐसा विरोध नहीं होना, ये न्याय
इसमें बहुत छोटा यही विषय आया है, पर्याय क्रमबद्ध छे तो पुरुषार्थ सेवा करवाना है, बहुत बढ़िया बात है, सारी प्रॉब्लम भी हो रही है, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है और बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं, जड़ इनकी समझ का फेर है, क्रम पर्याय क्रमबद्ध है, ये निर्णय आपने किया किसके आधार से किया? ये इस सर्वज्ञता के आधार से निर्णय हुआ, क्योंकि सर्वज्ञ ने जो जो देखा है जिस काल में वैसा ही होना है, और इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सर्वज्ञ ने देखा इसलिए नहीं होना है, होना ही है इसलिए वैसे देखा है, समझ रहे हैं? एक बात, अभी दूसरी बात, वो तो पर्याय जो होना है तो होना है, आपके सामने तो समस्या ये है कि जब अपना होने वाला होना है तो मैं क्या करूं और मैं क्या पुरुषार्थ करूं, तो पहले तो ये तय करो कि पुरुषार्थ कहते किसको, जो होता है उसे जानने का नाम पुरुषार्थ है, अब क्या करें, यही करो ना, जो होता हो तो जानो, बीत रास्ता कायम हो जाएगी, राग चला जाएगा, होने वाले को जानने वाले के राग आता नहीं है, और होने वाले का जो ज्ञाता बनता है उसे बीत रास्ता आए बिना रहती नहीं और उसे मुक्ति प्राप्त हो बिना रहती, ये पुरुषार्थ केवल जानने का नाम पुरुषार्थ है, कुछ पर्याय को आगे पीछे कर सके तो पुरुषार्थ हो, ये तो पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ इसी में बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ मत मत्सर हो,
जिनाबंद ने केवल ज्ञान को ज्ञापक निमित्त कहा है,
ज्ञापक निमित्त मान केवल वो बताने वाला है, वो कोई उस कार्य को कराने वाला नहीं होते, और एक आखिरी है इसका मैं बोल देता हूँ, आज आपने प्रवचन में बताया कि पहले देश कुटुंब वाली का राज छूटता है, बाद में दूसरा राज छूटता है, क्या राज छूटने में ऐसा क्रम होता है या सब राज एक साथ छूट जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनिए जरा मैं बता दूं, जरा देखो, छूटेगा सब साथ में, आप ये कह रहे हो तो हम एक दो आगम के तीन उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण तो है हमारे सामने भरत चक्रवर्ती का, उनका राग सारा का सारा राग अंतर मन में चला गया, एक उदाहरण है बाहुबली का, उनका राग एक साल के प्रयास में गया, समझना जरा ध्यान से, दूसरा पूर्ण क्लियर कर देंगे, और आदिनाथ का राग 1000 वर्ष में गया, इन तीनों ने वो एक अंदर मुहूर्त वाले पुरुषार्थ किया और कुछ किया नहीं, और बता दें समझाया, लेकिन इनको वो अंदर मुहूर्त वाला पुरुषार्थ कपड़ा उतार में साथ वाला केवल ज्ञान और गीत रास्ता कहेंगे, और इन्हें ये 100 वर्ष क्यों लग गए, उन्हें 1000 वर्ष क्यों लग गए, करते रहे थे सब आत्मन का पुरुषार्थ, ख्याल में आएगा नहीं, तो सबका पुरुषार्थ एक सर नहीं होता, एक बार, और पुरुषार्थ भी पहले गुण स्थान वाला पहले गुण स्थान से चौथे वाला पहले होता है, फिर अगले गुण स्थान बढ़ने वाले पुरुषार्थ होते हैं, और उनका नियम छठवां गुण स्थान है वो गिरने पर होता है, पुरुषार्थ से नहीं होता, समझाया नहीं, और आगे जाओ 11वां गुण स्थान है तो 11वां गुण स्थान में पुरुषार्थ ही होकर नीचे आएगा, छठवें में आएगा या वह नीचे जाएगा, इसलिए जो पुरुषार्थ होता है वो भी क्रमिक है, भले हम कहते हैं एक साथ होता है, वो तो मन भी एक साथ क्या होता, एक साथ केवल आत्मा की अनुभूति अखंड अगर चल जाए अंतर में, तो एक साथ रुकने काल में जितना विकार है सब क्षय को प्राप्त हो जाएगा, समझ में आएगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि शिखर जी की वंदना करनी है और उसमें 5,000-7,000 सीढ़ियां हैं, वंदना करने का हर सीढ़ी को चढ़ने का लक्ष्य क्या है? वंदना करना है, लेकिन वे सब सीढ़ियां क्रम से ही आएंगी कि एक साथ आएंगी? और वंदना जब हो गई तो सब सीढ़ियां पर क्रम की बातें ही रही नहीं, सीढ़ियां सीढ़ियों में रही आई, हमारा तो प्रयोग नहीं सकते। ये अपेक्षा से लोक में भी अब जीव पहले चौथे में आता है, फिर क्रम से पांचवें में इसलिए जाता है कि सातवें के लायक पुरुषार्थ नहीं कर पाता है तो पांचवें लायक करता है उसमें जाता है। और लोक में भी त्याग में क्रम होता है, श्रद्धा में क्रम नहीं होता, सही है ना? श्रद्धा तो एक समय में गैस का श्रद्धा और प्रतीति हुई, एक समय में समय दर्शन हो गया, उसी समय में समय दर्शन हो गया, उसी समय में ज्ञान हो गया, लेकिन चारित्र एक समय वाली बात नहीं है, इसमें क्रमिक विकास होता है और धीरे धीरे होता है। पुरुषार्थ जो मूल चीज है वो क्रमिक विकास होने वाला जो चारित्र है उसमें पुरुषार्थ अधिकतम घटता चला जाता है, और अधिकतम पुरुषार्थ उसको कहते हैं जहाँ स्वरूप में टिकने की अवधि बढ़ती चली जाती है, वो अधिकतम पुरुषार्थ में आता है, और कम टिकता है तो जल्दी बाहर आ जाता है, निकल में आ जाता है, ऐसा है। तो हमने जो बताया था वो तो नए चक्र चलाने की कला में इस क्रम से नए राग को तोड़ा जाता है, पहले उच्चरित राग को तोड़ा जाता है क्योंकि उसको तोड़ना ज्यादा कठिन नहीं, उसके बाद में अनुच्चरित राग को तोड़ा जाता है, फिर अनुच्चरित राग में ये देखना पड़ता है उच्चरित राग जो मिश्र पदार्थ है उनका तोड़ते हैं, फिर जो अचेतन पदार्थ है उनका तोड़ा जाता है, फिर जो चेतन पदार्थ जो है उनका तोड़ा जाता है। आपसे पूछते हैं आप घर का त्याग कर सकते हो, पहले के स्त्री का त्याग कर सकते हो, पहले बोलो
अलग अलग जैसे सब हमारा जिसका जैसा हो।
अरे ये तो घर ही नहीं होगा आपके यहाँ,
घरवाली से परेशान हो तो घर पहले छोड़ दे।
यहाँ कोई प्रयोजन नहीं चल रहा है, यहाँ प्रयोजन कोई दूसरा है, यहाँ तो केवल इतना प्रयोजन है राग जो कमजोर हो हमेशा नियम है, ये नियम है राजनीति का भी नियम है, कमजोर जो है उसको पहले हटा दो तो झंझट खत्म। अब जो बलवान बचा तो एक ही से लड़ेंगे, आपको मालूम है सिंह से अगर मधुमक्खी लड़े तो सिंह हारता है और मर जाता है, जीतता नहीं है, और जिसने उनको अलग कर दिया है फिर एक बड़े हाथी से लड़े तो जीत जाता है, सही है? ये जो विकल्प है ये बिल्कुल मधुमक्खी की भांति है, ये जब तक विकल्प से टूटे नहीं। आपको मालूम है वो वाड़ी शहर के साथ में कुशलदार दीक्षित हुआ था और कानी स्त्री को छोड़ के आया था, ऐसा 32 महाप्राणियों को छोड़ करके वाड़ी में आए थे, लेकिन उस एक कानी स्त्री का लाभ नहीं गया, तो वाड़ी शहर से बोले हमारे नगर में करेंगे वो चातुर्मास, मेरा जान गए कि अपने नगर में क्यों जाना चाहेगा, उन्होंने कहा सुना पहले हमारे नगर चलो फिर तुम्हारे नगर तुम्हारे चलेंगे, और वो नगर में गए और वहाँ गए जहाँ रानियों को छोड़ के आए थे, माँ को संदेह हो गया कि ये शायद इनको बना नहीं साधना बनी नहीं इसलिए लौट आए, तो उनकी परीक्षा करने काट की चौकी रखी और सोने वाली चौकी काट की चौकी बैठ गए, उन्होंने पूछा और एक जब इन्हें आदेश दिया
रानियों
को बुलवा दो, बढ़ गया
सच झट के बुला,
और सच झट के बुला बुलाया और उनसे कहा बाबू को कहा उस डाल से देख लो तुम्हारी स्त्री इनकी तुलना में कुछ है कि नहीं, कुछ नहीं है, इनको जीवन प्राण समझा दी, कैसा त्याग दिया है जैसे सूखे घास को त्याग देते, गुरुदेव के शब्दों में कहो तो धूल जल का त्याग दिया, अरे जिसको महिमा स्वभाव की आती है उसको बाहर के महारतन भी धूल नजर आते हैं और वे धूल ही देखता है उनको, उनको कभी भी अच्छा नहीं देखता। इस अच्छी घटना है 2002 में सबसे डुबुल चंदी वहाँ पधारे थे, उस समय की कीमत में कोई 18 लाख का कंठा फैले हुए थे गले में, तो किसी को ऐसा सूझा विकल्प आया तो गुरुदेव उसको कैसे जरा कह दिया किसी ने, अरे हर किस्म के वे होते हैं गुरुदेव, जे शेर साहब जो कंठा देने 18 लाख का है, उस समय का 18 लाख करोड़ों का समझ लेना 18 करोड़, गुरुदेव बोले भैया धूल है, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या कीमत है, रतन को सम्यक दर्शन का नाम है, रतन तो सम्यक ज्ञान का नाम है, रतन तो सम्यक क्षेत्र का नाम है, बाकी तो कहने के रतन है, दूर वाले रतन है, इनमें रतन पड़ा देखना अपनी दृष्टि लगाना।
ये प्रयोजन से हमने इसको बताया था।
पुरुषार्थ से जीव जगत को भटकता है। अब जरा इसमें 160 गाथा से समझता से स्पष्ट कर दे और अच्छा रहे। उसमें क्या हमने चंद्राचार्य भी यही लिखा, अपना पुरुषार्थ के अपराध से जीव संसार में रखा।
थोड़ा
एक वस्तु और दूसरी वस्तु में कोई संबंध नहीं है। यहाँ कौन कौन से प्रकार के संबंध का निषेध किया गया है? क्या जीव और अन्य द्रव्य में एक नायक संबंध और निमित्त संबंध संबंधी नहीं है? दूसरा आश्रय और संबंध का प्रदेश भेद है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को विशेष स्पष्ट कीजिए। और तीसरा आत्मा के असंग के प्रदेश के चेहरे अंत में क्या इसका मतलब स्पष्ट करें। ऐसा है कि निमित्त नियमित संबंध दो द्रव्य की दो पर्यायों के बीच में होता है, तो एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य के बीच में नहीं होता है, दो द्रव्य की दो पर्यायों के बीच में होता है। और नई नायक कदम को तो पूरी गुरुदेव जी ने ये प्रवचन में व्यवहार कह दिया है, वो आज नहीं आया तो कल आएगा। एक ये बात है, आश्रम और सवर्ग के प्रदेश भेद है। आश्रम और सवर्ग के प्रदेश भेद होते ही है, क्योंकि सवर्ग जब होता है तो सवर्ग का लक्षण ऐसा होता है कि सवर्ग विकारी द्रव्य में अहम करके उत्पन्न होता है। तब आश्रम के प्रदेश का अगर अहम वो प्रदेश एक हो तो आश्रम के प्रदेश का भी अहम होने से कभी समझ प्रगति होता है। इस अपेक्षा से आश्रम और समझ के दोनों के प्रदेश पृथक पृथक ही है। विकार आत्मा के अर्थन के प्रदेश के चेहरे अंत में है। विकार जो होता है वो पूज्य गुरुदेव जी ने आज बहुत स्पष्ट किया था, और उसमें प्रश्न भी बहुत आए थे, चेहरा अंक में कौन सा अंक, बलटता हूँ की अबलटता हूँ, ऊपर का हूँ की नीचे का हूँ, असंख्य प्रदेश वाला हूँ, उसमें सब प्रदेश में ऊपर का हूँ की एक प्रदेश में ऊपर का हूँ, ये बहुत चर्चा है। आज आई पूज्य गुरुदेव जी को बहुत प्रश्न पूछा और पूज्य गुरुदेव जी ने यही जवाब दिया कि असंख्य प्रदेश में जितने प्रदेश में जहाँ पे विकार ऊपर के अंत से होता है उतना अंत आत्मा का प्रदेश से भिन्न रहता है, ये उनकी व्याख्या है। और अपनी अपनी जगह जो भी है वो सत्य है। अभी क्या है कि प्रदेश तो अलग ही है, अभी प्रदेश अलग है उसका अर्थ ये है कि जब तक आश्रम का प्रदेश आश्रम है जब तक प्रदेश है तब तक वो प्रदेश को भिन्न गिना जाता है। अभी आश्रम के प्रदेश चले जाते हैं तो प्रदेश नहीं चले जाते, असंख्य प्रदेश की आत्मा तो ले जाता है, वो प्रदेश समय का हो जाता है। फिर गुरुदेव ने वो भी स्पष्ट किया था कि जितनेदास ने ऐसा किया है कि आश्रय के प्रदेश तो भिन्न है मगर आश्रय का जो पूर्वक समर होता है निर्विकारी प्रत्यय होती है उसके भी प्रदेश भिन्न किए जाते हैं। तो वहाँ ये लिखता है कि उत्पाद ये और ध्रुव दोनों को अलग अलग आप देखो तो निर्विकारी पर्याय के भी प्रदेश भिन्न हो जाते हैं और निर्विकारी के प्रदेश भिन्न है और आश्रम और समर्थ प्रदेश इस तरीके से भिन्न है। समर्थ लग सकता है तो आश्रम का प्रदेश का लक्ष्य नहीं आता है, उस अपेक्षा से उसके प्रदेश की भिन्न
ध्रुव की ध्रुवता में ध्रुवता नहीं।
समय हो गया भाई साहब, अब बाद में ले लेंगे बाकी प्रश्न, अभी चार पांच बाकी है।